सभी आने पे था उसका लिस्ट बनाएंगे क्या क्या जरूरत है 15वें श्लोक तक, 10वें श्लोक से 15वें श्लोक तक 6 श्लोकों में। ओके हम लोग कहाँ पर थे? तो 12वें श्लोक तक हुआ ना। शुचोदेश प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः ना तुषितम ना तिनीचम शैलांजी न कुशोत्तरम। तो कितने हो गए यहाँ पर? 4 हो गए है कि नहीं? कितने हो गए इस श्लोक में? शुचोदेश प्रतिष्ठाप्य। सो शुचोदेश एक ऐसे निर्जन स्थान में जाना चाहिए। स्थिरम प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। तो एक आसन के ऊपर अपने आप को स्थित करना चाहिए। और वो आसन कैसे होना चाहिए? ना तुश्रितम ना तिनीचम। ऊपर भी नहीं होना चाहिए, बहुत नीचे भी नहीं होना चाहिए। और चौथा है छैलाम जी ना कुशोत्तरम। उसके ऊपर क्या क्या डालना चाहिए? कुशाकाश डालना चाहिए और छैलाम जी ना मतलब ऐसा कुछ कपड़ा या मृग 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 त्वचा को डालना चाहिए। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा मन को एकाग्रित करके एकाग्रित करना चाहिए। पांचवा हो गया। फिर यथा चित्तेन्द्रिय क्रियः मन इंद्रियों को और कार्यकलापों को नियंत्रित करना चाहिए। उपविश्य आसने उपविश्य आसने युञ्ज्याद् योगम आत्मविशुद्धये। तो आत्म को शुद्ध करने के लिए योग अभ्यास करना चाहिए। तो वो भी लिखना है, आत्मशुद्धि भी जरूरत है करके। कितना हो गया अभी? 7 हो गया ना? 7 हो गया ना? ठीक है, आगे लिखे देखेंगे। तो श्लोक क्रमांक 13 और 14। समम काया शिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः संप्रेक्षणासिकद्रष्टुं दिशश्चानवलोकयन् प्रशांतात्मा विगतव्य ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। सो समं काय शिरो ग्रीवं धारयन् अचल स्थिरः। पहले अनुवाद पढ़ेंगे। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वो अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे। तो वो ये 8वां है ना, अपने शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे। जब हम लोग जब कहते हैं ऐसे करना चाहिए, सीधा रहना चाहिए। उससे क्या होता है? हमें नींद नहीं आएगा पहला चीज, और दूसरा चीज आप बैठे तो आप नहीं बैठते तो चलो अलग बात है, वो बैठते हैं तो ऐसे बैठना चाहिए। तो उससे क्या हो जाता है? नींद नहीं आएगा। और दूसरा महत्वपूर्ण, जप के प्रति हमारा थोड़ा आदर भाव आएगा। ऐसे बैठेंगे हाँ वो भी चलता रहेगा, हम बैठ के कुछ और सोचेंगे है ना। तो आदर भावना आता है ना, हम सीधा बैठते हैं तो कुछ ऐसा ध्यान की भावना आ जाता है ना। तो आदर भावना, प्रभुपाद जी बोले वो वी शुड चैंट विथ एव एंड रेवरेंस, ऐसे बोलते आदर भाव। किंत्वादराद अनुदिनम खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी क्रमान भवति। रूप गोस्वामी ने बताया आदर भाव से बहुत ही ध्यान पूर्वक उसको जप करना चाहिए। तो कुछ अष्टांग योग के ऐसे कुछ नियम भी हम पालन कर सकते हैं जो हमें जप करने के लिए अनुकूल कारक है ना। तो शरीर गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए, ये आठवां हो गया है ना। इस प्रकार नहीं नहीं नवा हो गया, पहले सात हुए थे और ये दो। इस प्रकार वह अविचलित तथा धमित मन से भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः युक्त होकर हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। यहाँ पर बहुत सारे चीज है, उसको अविचलित क्या है, अविचलित होना चाहिए, वो संस्कृत में क्या है, अचरम, या प्रशांत होना चाहिए, प्रशांत आत्मा होना चाहिए। वो दोनों एक ही है, प्रशांत आत्मा क्या है, अविचलित मन तथा दमित मन, अविचलित तथा दमित मन से, तो ये एक हो गया। तो अभी कितने हो गए, दस हो गए। और विगत भी मतलब भय रहित होना चाहिए, ग्यारह हो गए। विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर मतलब ब्रह्मचारी व्रते स्थित है ना, कितना हो गए, बारह हो गए। और क्या होना चाहिए, ब्रह्मचारी व्रते स्थित मन संयम्य, वो तो हो गया दमित मन से, वो उसमें जोड़ दिया उसको, प्रशांत मन संयम्य पूर्णतः दमित करके मत चित्त, तो हृदय में मेरा चिंतन करो, मत चित्त है ना, मत चित्त युक्त वास्तविक योगी आसित मत पर, मुझे ही अपना चरण लक्ष्य बनाना चाहिए। ठीक है, कितने हो गए फिर, ब्रह्मचारी स्थित है, व्रत स्थित है, वहां वहां तक कितने हुए थे, कितने हुए थे, वहां तक चौदह हो गए थे। तो इस श्लोक के पहले सात हुए थे, फिर उसके बाद दो, नौ, दस, ग्यारह, तेरह, चौदह और ये दो, कितना हो गए, सत्रह हो गए, सत्रह हो गए है ना। सो सत्रह हो गए। प्रशांत मन और दमित मन उसको अलग रख दीजिए, क्योंकि बाद में उसके लिए अलग से बोल रहे थे ऊपर। इस श्लोक तक सत्रह हो गए, ये सब वह जरूरतें हैं। और प्रॉपर इसके ऊपर तात्पर्य देते हैं, वो अंत में जो वर्णन आता है, अंत में क्या वर्णन आता है, युक्त आसीत मत पर, मत चित्तो युक्त आसीत मत पर, तो हमेशा हृदय में भगवान का चिंतन कर, भगवान को ही चरम लक्ष्य मानना चाहिए, मत पर उसको ऊपर जोर दे रहे प्रॉपर तात्पर्य में। जीवन का लक्ष्य क्या है, नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, हमारा स्वार्थ गति विष्णु है, लोग इसको जानते नहीं, इसलिए प्रहलाद महाराज नते विदु स्वार्थ गति। और योग अभ्यास का भी लक्ष्य क्या है, वो भगवान कृष्ण है। आजकल ऐसे योग अभ्यास सिखाया जाता है ना, कोई वो लाइट के ऊपर ध्यान करो या कुछ शून्य के ऊपर ध्यान करो, ऐसे ऐसे कुछ चीजों को सिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे मत मत मेरे मेरे मत चित्ता मत पर बोल रहे, मेरे ऊपर ध्यान करो, ऐसे बोल रहे। तो भगवान कृष्ण या हृदय में जो विष्णु मूर्ति है उनके ऊपर ध्यान करना चाहिए। अन्य जो लोग है, द्रौपदी जी यहाँ पर क्या बोलते, यूजलेसली एंगेज इन मॉक योगा प्रैक्टिस एंड सर्टनली वेस्टिंग हिज टाइम, मॉक योगा प्रैक्टिस तथाकथित योग, सिर्फ दिखावा योग जो है उसको अभ्यास कर रहे हैं लोग दुनिया में ना? हम लोग गए थे ना ऋषिकेश में, बहुत सारे ऐसे योग 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 सब जगह योग 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 संस्थाएं हैं, और सब लोग दिखावा का योग कर रहे हो लोग, क्योंकि वो भगवान विष्णु या कृष्ण के बारे में ध्यान नहीं कर रहे, उनका चित्त उनके ऊपर नहीं लगा रहे, तो इसलिए वो सब दिखावा योगा है। और उसके बाद प्रभुपाद लोग क्या बोल रहे, ब्रह्मचारी व्रते स्थित, उसके ऊपर भी जोर दे रहे हैं यहाँ पर तात्पर्य में। हाँ, ब्रह्मचारी व्रते स्थित, एक को ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होना चाहिए। आजकल हम बता रहे थे ना सुबह, वो सफ़ेद बंदर बंदरिया आते हैं साथ में रहते हैं, सब नशा करते हैं और इंद्रिय भोग में लगते हैं और उसके साथ साथ ऐसे योग करते हैं। प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में यहाँ पर कह रहे कि हर रोज ऐसे मैथुन में लगो और दिन में थोड़ा समय योग में योगाभ्यास करो, वो चलेगा नहीं है सब। ब्रह्मचारी व्रत स्थित हो, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होना चाहिए। तो यज्ञवल्क्य स्मृति शास्त्र से यहाँ पर ब्रह्मचर्य का अर्थ यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। तो ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ होता है कि सभी कालों में सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने से सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। तो इसको त्यागने के लिए, और प्रॉपर यहाँ पर बोलते हैं मैथुन में प्रवृत्त रहकर योग अभ्यास नहीं किया जा सकता, इसलिए आप बचपन से ही जब मैथुन को कोई ज्ञान भी नहीं होता ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनाने में दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वो ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन को विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। तो प्रभुपाद यहाँ पर बोलते हैं कि ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। समझ में आ रहा है, कोई भी हो, कोई भी योग अभ्यास में ब्रह्मचर्य व्रत को पालन किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम इसलिए कहते हैं ना सभी लोग, सभी बच्चे क्या है, गुरुकुल में जाना चाहिए। जब तक वो लोग नहीं जाएंगे तो कैसे वो इसके ऊपर मैथुन के ऊपर निग्रह कर पाएंगे। फिर ऐसे योग अभ्यास में कैसे वो हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी योग हो, भक्ति योग या अष्टांग योग, कोई भी हो योग हो, उसके लिए ये ब्रह्मचर्य प्रशिक्षण जरूरत है। तो पहले जमाने में इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं, स्वाभाविक वो लोग गुरुकुल में जाते थे, है ना, शिक्षा मतलब गुरुकुल में जाते थे। तो ऐसे वो लोग योग अभ्यास में प्रगति करते थे, कोई भी योग में हो, भक्ति योग या ऐसे योग में, है ना। तो इसलिए ये बहुत ही जरूरत है। तो ब्रह्मचारी व्रते स्थित, ट्रांसलेशन मिस्टेक, वो एवरी लाइन यू विल फाइंड मिस्टेक और नाउ विल नॉट डिस्कस दैट मिस्टेक्स। यू डू दैट सर्विस इफ यू वांट। दोज हु आर रीडिंग भगवद्गीता इन हिंदी एंड दोज हु नो इंग्लिश ऑल्सो, नाउ वेन एवर यू आर रीडिंग यू कैन डू दिस सर्विस। एनी वे वी रीड नो डेली बुक्स, राइट आर नॉट। If you are reading Bhagavad Gita, you can note down all these points. So all three of you, even Gurudas Prabhu, whenever you are reading Bhagavad Gita, that time you all can note down all these things and later we can club them. Separately, we don't have to take time out. Anytime when you read one purport, you can read along with English book. ठीक है, समझ में आ रहा है। जिसको भी अंग्रेजी आता है, ललित कृष्ण प्रभु also can. तो जो भी मिस्टेक है ये 5-6 लोग ये करना चाहिए, ये सेवा है, प्रभुपाद जी के लिए सेवा होगा ना ये, है कि नहीं। तो ये भी महत्वपूर्ण है। आप लोग पुस्तक वितरण करते हो लेकिन सही संदेश है वो यू नो जाता नहीं है तो अच्छा नहीं रहेगा। प्रभुपाद जी ने, हालांकि वो है प्रति श्लोकम अवध्य वध्यपि, प्रभुपाद जी ने ये भी कहा है एक जो इसमें गलती हो गया तो पूरा बुक ही उसका क्या है, व्यर्थ है, ऐसे बोलते हैं। जो वन मिस्टेक ऑल्सो विल बार द होल बुक, ऐसे मार द होल बुक, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो वो गलत है, ठीक है। हाँ तो हम क्या बोल रहे थे, आपने रोक दिया हमें। तो यहाँ पर गुरुकुल भेजा जाता था जहाँ तक, हाँ तो ऐसे अभ्यास किए बिना किसी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वो ध्यान हो या की हो, ज्ञान हो। और फिर यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, ऐसे कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति है वो नियमित तौर पर ऐसे मैथुन भोग में लगता है, मतलब उसका अर्थ क्या है, धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतः, सिर्फ कृष्ण भावना भावित बच्चों को जन्म देने के लिए उसको मैथुन में लगना चाहिए, अन्य समय उसको भी उसके ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए उसको। ऐसे व्यक्ति को भी ब्रह्मचारी कहते हैं, उस उनके लिए नाम है ना, किसी को पता है क्या ब्रह्मचारी बोलते हैं उनको, ऐसे गृहस्थों को जो नियमित मैथुन सुख में लगते हैं उनको क्या ब्रह्मचारी, कैसे ब्रह्मचारी कहते हैं उनको, उपकूर्वण ब्रह्मचारी कहते हैं, और संस्कृत उनका नाम होता है। तो आजकल बहुत बार चर्चा होता है, इस्कॉन में बहुत सारा चर्चा होता है कि बहुत बहुत लोगों ने हमें बताया कि ये आजकल पालन नहीं हो रहा है करके गृहस्थ जीवन में, तो हाँ उपकूर्वण ब्रह्मचारी, तो ये पालन नहीं हो रहा है करके हमें बहुत सारे लोगों ने बताया। तो और इसके बारे में जोर नहीं दिया जा रहा है, दो जोर नहीं देना चाहिए ऐसे, लेकिन और ऐसे भी बताया गया हमें कि प्रभुपाद जी ने भी इसको स्वीकार किया क्योंकि ये मुश्किल है करके पालन करना, कम से कम वो यू नो क्या कर रहे हैं, या कम से कम वो एक ही पत्नी के साथ ऐसे कर रहे हैं। लेकिन ना जो लोग कृष्ण भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, अपने चेतना को शुद्ध करना चाहते हैं, तो उन्हें उसको पालन करना ही चाहिए। श्रील प्रभुपाद पंचम स्कंद में लिखते हैं इसके बारे में, बहुत जोर से बोला है प्रभुपाद जी ने, हालांकि वो व्यक्तिगत रूप से अनुमति दिया होगा लेकिन उसके विरुद्ध तो बहुत जोर से बोला है। तो और पंचम स्कंद में तो ऐसे ही लिखा उन्होंने, इसके कारण मन दूषित हो जाता है, ऐसा जो आंदोलन जो पूरा दुनिया को मुक्त करने के लिए शुरू हुआ है वो भी इसके कारण उसका भी नष्ट हो सकता है, ऐसे प्रभुपाद जी ने बताया हरे कृष्ण आंदोलन के कारण। तो इसको बहुत जागरूकता से हमें पालन करना, इसीलिए ना बहुत सारा तनाव आता है भक्तों के बीच में, झगड़ा तनाव ये सब इसके कारण है, मन दूषित हो जाता है इसके कारण। तो इसको अच्छी तरह से हमें ऐसे वातावरण बना चाहिए, अभी ये जो ऐसे राजसिक वातावरण के कारण मन विचलित हो जाता है, तो ऐसे वो अनियंत्रित इंद्र तृप्ति में लोग लग जाते हैं, है ना, ऐसे वातावरण है तो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, सब जगह ऐसे मैथुन को ही ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ना, प्रमोट किया जा रहा है उसको, ऐसे वातावरण में लेंगे तो लोग तो उसको पालन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको जागरूकता से हमें करना चाहिए, तो ऐसे इसलिए वर्णाश्रम सभ्यता का जरूरत होता है। तो पहले सभी जो भी बच्चे हैं सबको ब्रह्मचार्य आश्रम में उनको प्रशिक्षण करने देने के लिए प्राप्त करने के लिए भेजना चाहिए, सभी बच्चे जो भी इस्कॉन में आते हैं वो सभी बच्चे इसको प्रशिक्षण लेना चाहिए, या जो भी अविवाहित व्यक्ति या यू नो लड़का आता है वो सब लोग इसमें प्रशिक्षण लेना चाहिए, कम से कम कुछ तो समय इसमें बिता के ब्रह्मचार्य आश्रम में रह के जाना चाहिए, ताकि उनका जो आध्यात्मिक जो ऊंचा रस का अनुभव होना चाहिए, ताकि बाद में जाके वो लोग नियमित जीवन बिता सकते हैं। सत्वगुण में ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण मतलब क्या है, वो सत्वगुण में प्रशिक्षण प्रभुपाद जी कहा करते थे, जो लड़का है उसको सत्वगुण में प्रशिक्षण होना चाहिए, ऐसे सत्वगुण में रहना चाहिए, और जो बच्ची है उसको कैसे साध्वी स्त्री सतीव्रता पतिव्रता स्त्री या होना चाहिए उसके लिए प्रशिक्षण होना चाहिए, वो प्रशिक्षण उसको गुरुकुल में नहीं होता, वो माँ के मार्गदर्शन में होता। ऐसे हमें प्रशिक्षण होना चाहिए, देना चाहिए, नहीं तो कोई योग में हम लोग प्रगति नहीं करेंगे। आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं और मन क्या है, तो मन शुद्ध हो रहा है, चेतना शुद्ध हो रहा है, और फिर ऐसे इंद्र तृप्ति करने से फिर चेतना क्या है, अशुद्ध हो जाता है। तो वो क्या है, अग्नि जलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर पानी डाल रहे हैं, या ऐसे आगे बढ़ने के लिए एक कदम आगे रखते हैं, फिर से एक कदम पीछे रहते हैं, अभी कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ऐसा है स्थिति, ठीक है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी फिर से भक्ति योग का महत्ता को बता रहे हैं। अष्टांग योग में तो ऐसे गृहस्थों को स्वीकार ही नहीं किया जाता है, वो पहले ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहना चाहिए, लेकिन भक्ति योग में ऐसे उपपूर्ण ब्रह्मचार्यों को भी स्वीकार किया जाता है, वो भी भक्ति कर सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, भक्ति इतना शक्तिशाली है, भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वयं ही मैथुन के आकर्षण त्याग देता है। लेकिन वो होना चाहिए, वो है ना, भक्ति में लग के उसके लिए, उसके प्रति अनासक्ति जागृत होना चाहिए, नहीं तो आपकी भक्ति में कुछ गलती है। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल को नियमाग्रह जनसंघस्य लवलेंश षड्वीर भक्ति विनश्यति, ऐसे कुछ कर रहे, या आप उसको उत्साह निश्चय तो उसको पालन नहीं कर रहे। तो भक्ति में लगने के बाद गृहस्थों को भी ये मैथुन के प्रति अनासक्ति आना चाहिए। प्रभुपाद जी उनके गृहस्थ आश्रम के बारे में वर्णन करते हो कि पति पत्नी वो विवाह करना चाहिए, और विवाह करने के बाद 4 साल में 2-3 बच्चे को जन्म देना चाहिए, और बाद में वो अलग मंदिर में रहना चाहिए, अलग होकर मंदिर में रहना चाहिए, ऐसे 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 प्रभुपाद जी गृहस्थ आश्रम का वर्णन करते। तो ऐसे अनासक्ति आना चाहिए, वो अभी कल्पना भी नहीं है इसके बारे में लोगों को ऐसे कैसे होता है, है ना। ठीक है, आप मंदिर में नहीं रहते हैं तो 50 साल या 40 साल तक, अभी 50 साल नहीं है क्योंकि हम 100 साल तक तो नहीं रहते हैं, तो 40 साल तक, 35-40 साल तक तो खत्म कर देना चाहिए उसको, हाँ, व्यस्त जीवन को अभी बस करके रोक देना चाहिए उसको, और पूरा भक्ति में लग जाना चाहिए। तो ये अनाशक्ति का अर्थ है, भक्ति का सेवा करके वो जागृत होना चाहिए, नहीं तो ठीक तरह से नहीं कर रहे हैं, ऐसे सोचना चाहिए, ठीक है। तो या तो भगवद्गीता में वो विषया विनिवर्तन्ते ऊंचा कैसे रस प्राप्त होता है उसके बारे में बोल रहे हैं। फिर उसके उसके बाद में प्रभुपाद जी वो वो शब्द है ना, विगत भी प्रशांत आत्मा विगत बिर, तो विगत भी क्या है, भय से मुक्त होना चाहिए। कृष्ण बाणामृत हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता है। बद्ध जीव अपने विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 38वें श्लोक 37वें श्लोक का कथन है, भयम द्वितीया विनिवेशतः स्याद् ईशापदे ईशाप ईशाप ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति ही। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले से ही समस्त योगियों से श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि का नियम तथाकथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। तो हम लोग जान सकते हैं इन सभी वर्णनों से कि ये सभी योग संस्थाएं क्या कर रहे हैं, सब बकवास व्यर्थ कर रहे हैं, सब गुमराह कर रहे हैं, लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं और अपने आप भी गुमराह भ्रमित है। और इसमें बहुत सारे योग की आवश्यकताओं को हम लोगों ने देखा इसमें, इस श्लोक में, लेकिन प्रमुखता एक इच्छा है, 3 महत्वपूर्ण है इन सभी में, जो कौन कौन से बताइए, 3 वो 3 या 4। तो पहला है भगवान के ऊपर चित्त लगातार और उनको ही सर हमारे लक्ष्य मानना, वो पहला है। और दूसरा है हरे कृष्णा, तो दूसरा है ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, और तीसरा विगत भी। ये तीनों या चार जो अंग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये है, होना ही चाहिए, ठीक है। और भक्ति में भी भय नहीं रहना चाहिए, उतना भयभीत नहीं रहना चाहिए। हरे कृष्ण समन कैन डू देम मनो कैन डू देम सम सारा दैट स्वीट इज देयर नो कॉल खत्म हो गए कॉल गिव समथिंग व्हाट एवर इज रिमेनिंग गो 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 कॉल देम अगला श्लोक युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमं मत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमी मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवद्धाम की प्राप्ति होती है। तो ये भी जरूरतें हैं, यहाँ पर कुछ जरूरतों का वर्णन किया है, क्या कहते हैं आप, कुछ आवश्यकताओं का योग अभ्यास के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसका वर्णन करते हैं भगवान माधवेंद्र प्रभु, क्या वर्णन करते हैं यहाँ पर भगवान, ये भी आवश्यकताएं है क्या? तो इस श्लोक में आवश्यकताएं नहीं है क्योंकि वो पहले ही ये सब चीज वर्णन वर्णित किए गए हैं। तो इसमें वो योग का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बताए गए हैं। तो कैसे प्राप्त करता है इस योगाभ्यास करके वो, तो विशेष करके भगवद्धाम की प्राप्ति होती है, मत संस्थाम अधिगच्छति, तो वो महत्वपूर्ण है कि योगी ऐसे शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवद्धाम की प्राप्ति होती है। उसके लक्ष्य के बारे में वर्णन किया गया, तो कैसे लक्ष्य को वो प्राप्त करता है, योग अष्टांग योग का जो लक्ष्य है वो भी भगवान के धाम है। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में वो भगवद्धाम के बारे में वर्णन करते हैं। न तद भासते सूर्यो न शशांको न पावक यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। बोले इसके अनुवाद माधवेंद्र प्रभु, बोले इस श्लोक का अनुवाद बोले। न तद भासते सूर्यो न शशांको न का पावक जिस धाम वो मेरा परम धाम में कोई सूरज चंद्रमा या अग्नि अग्नि के प्रकाश का जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाशमान है। और जिसको ये प्राप्त करते हैं कभी फिर से इस भौतिक जगत में लौट के नहीं आते हैं, ऐसे कहते हैं, है ना। और प्रभुपाद भी उसके आरंभ में तात्पर्य के आरंभ में वो भी बता रहे हैं, आजकल ये लक्ष्य है अष्टांग योग का लक्ष्य है, योगाभ्यास का लक्ष्य बताया गया इस श्लोक में। आजकल किसके लिए करते हैं, कौन से लक्ष्य के लिए वो लोग योगाभ्यास करते हैं बताइए, कौन क्या क्या करते हैं, एक एक करके बताइए, कौन बताएंगे, एक हाथ ऊपर उठ लीजिए, किसके लिए करते हैं, हाँ बोले। सो शरीर को दुष्ट पुष्ट करने के लिए योगाभ्यास करते हैं, और लंबे समय तक जीने के लिए योगाभ्यास करते हैं, और मन को शांत और तनाव से मुक्त होने के लिए, और वही बोलने वाले थे आप, और कुछ, और कुछ योगा फॉर प्रेगनेंसी, टेंशन वो हो गया, तनाव से मुक्त होने के लिए, मैथुन सुख को बढ़ाने के लिए, है ना। हाँ, मैथुन सुख को बढ़ाने के लिए करते हैं, और किसके लिए करते हैं, या कुछ दिखावा करने के लिए, योगी बन, मैं बहुत बड़ा योगी हूँ ऐसे, या योग सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए योगा करते हैं, और वेट रिड्यूस करने के लिए योगा करते हैं, हम भी कर सकते हैं। और कुछ वो मैंने बताया, तो ये सब, या कुछ ऐसे है जिम्नास्टिक, इस तात्पर्य के अंत में बोलते हैं वो, कुछ व्यायाम, जिम्नास्टिक, कुछ व्यायाम दिखाने के लिए, कुछ वो क्या है, वो जमीन से ऊपर ऐसे उनका वो दिखावा करते हैं, बैठे हुए दिखावा करते हैं, और ऐसे बहुत सारा चीज लोग दिखावा करते हैं। तो ये सब उसका लक्षण है, लक्ष्य क्या है, भगवान विष्णु, और उनके धाम को प्राप्त करना, भगवान के धाम को प्राप्त करना वो है। बीच में एक पूर्ण योगी जिसे भगवान कृष्ण के पूर्ण ज्ञान है, जैसा कि यहाँ पर भगवान ने कहा है, मत चित्त मत पर, मत चित्त मत पर, वो पहले के श्लोक में बताया था, इसके पहले के श्लोक में, और मत संस्थान वो यहाँ पर बताया गया है ना। तो वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है, और अंततो गत्वा कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है। तो गोलोक वृंदावन में वहाँ पर अलग अलग जगह पर वर्णन किया गया है। तो और अंत में वेदों में श्वेताक्षर उपनिषद भी हम पाते हैं, तमेव विदित्वा अति मृत्यु में, केवल भगवान कृष्ण को जानने पर ही जन्म तथा मृत्यु के पथ को जीत जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में योग की पूर्णता संसार से मुक्ति प्राप्त करने में है। इंद्र जाल अथवा व्यायाम के कर्तव्यों द्वारा अबोध जनता को मूर्ख बनाने में नहीं है ना। ऐसा जिम्नास्टिक या मैजिक करने के लिए ये योगाभ्यास नहीं है। तो ये सब चीज हमें याद रखना चाहिए। अभी प्रचार में आप जाएंगे ना, तो लोग बताएंगे मैं भी योग योग कर रहा हूँ, मैं भी वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ करके, ये सब उनको बताना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, क्या क्या जरूरतें है उसके लिए। ये सब जरूरतों को देखेंगे तो अभी इस योगाभ्यास करने के लिए होगा नहीं है। तो इसलिए आप हरे कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, ऐसे बोलना चाहिए। तो और इसके ऊपर बोलते, और थोड़ा अभी लक्ष्य को बताने के बाद फिर से भगवान और क्या जरूरत है इस योगाभ्यास करने के लिए उसके बारे में बताते हैं। ये सीधे अंग नहीं है, लेकिन ये योगों योग अष्टांग योग को पालन करने के लिए वो सहायता करते हैं, इसलिए उनको बाद में बताया भगवान ने। समझ में आया, ये सीधे अष्टांग योग के अंग नहीं है, लेकिन सहायता करते हैं। ठीक है, सो श्लोक क्रमांक 16, नात्यश्नतस्तु योगोस्ति नैच्छैकान्तं मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर खाना और सोने में जिस क्या मात्रा होना चाहिए, कितना कर सकते करना चाहिए, तो कितना खाना चाहिए बताइए। शरीर और आत्मा को साथ में रखने के लिए वो योग पद्धति में ठीक है, लेकिन भक्ति में कितना खाना चाहिए बताइए। हमारे सेवा के अनुसार, हमारा सेवा का स्वभाव के अनुसार क्या करना चाहिए, हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो उससे ज़्यादा खाएंगे तो हम लोग भक्ति में प्रगति नहीं, वो अत्याहार हो जाएगा, अत्याहार से क्या हो जाता है, भक्ति नष्ट हो जाता है ना। प्रसाद भी हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जितना जरूरत है उतना ही कर्म चाहिए। पहला चीज प्रसाद के प्रति अपराध होता है, पहला चीज, और दूसरा चीज क्या हो जाता है, इंद्रियां बहुत प्रबल हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे वर्णन आता है, जब हम लोग ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा नींद करना पड़ेगा हम लोगों को, तो ये सब समस्याएं होते हैं भक्ति में। और योगी को जितना शरीर और आत्मा को बना के रखने के लिए उतना ही खाना चाहिए। और प्रभुपाद यहाँ पर सिर्फ क्वांटिटी के बारे में चर्चा नहीं करते, तात्पर्य में, क्वालिटी के बारे में क्या खाना चाहिए उसका भी वर्णन करते हैं योगी को। आजकल जो योग संस्थाएं जो है योग पद्धति को सिखाते हैं, इसके बारे में वो बताते नहीं हैं। कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, कुछ भी पियो, थोड़ा बहुत 15 मिनट दिन में ये सब करो, ऐसे बोलते हैं, है ना। यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं क्योंकि योग, कोई भी योग अभ्यास करने के लिए हमें सत्वगुण में स्थित रहना चाहिए, या इंद्रिय भोग की जिह्वा के लालसा से, योग मतलब इंद्रिय तृप्ति से अलग होना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति दूर हो। तो सिर्फ जिह्वा की लालसा को संतुष्ट करने के लिए ऐसे मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, वो योगी नहीं बन सकते। आजकल कई सारे ऐसे योगी है ना, या कोई आध्यात्मवादी है, बहुत सारे मांस भक्षण करते हैं। और वो प्रसिद्ध स्वामी भी था जिसने प्रचार किया है, सो स्पिरिचुअल लाइफ एंड मीट ईटिंग हैज नो कनेक्शन, ऐसे वो प्रचार किया उसने। क्या हुआ? विवेकानंद, उसने ऐसे प्रचार किया उसने। तो इसलिए वो लोग हमारे आचार्य उनकी संस्था को क्या बोलते हैं, मुर्गी मिशन कहते हैं, क्योंकि वो लोग मुर्गी खाते हैं, है ना, काट काट के मुर्गी खाना। सभी उस संस्था में सन्यासी होते हैं लेकिन मुर्गी खाते हैं। तो ऐसे तमोगुणी, तमोगुण में कैसे योग में आगे बढ़ेंगे हम, तो बाद में वर्णन करेंगे ना। भगवान तीन प्रकार के जो अन्न होते हैं, 17वें अध्याय में भगवान तीन प्रकार के अन्नों का वर्णन करते हैं। तो वहाँ पर बताया गया कि सत्वगुण में जो अन्न, रजोगुण में तो अन्न, और तमोगुण में, सत्वगुण में क्या होता है, बहुत ही रुचिकर होता है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, रसीली होता है, हाँ। और रजोगुण में क्या होता है, बहुत ही मसालादार होता है, है ना, हाँ, मसालादार होता है, बहुत ही क्या होता है, मिर्ची होता है, बहुत सारा क्या होता है, और खट्टा होता है, और बहुत यू नो व्हाट द सॉल्टी, क्या बोलते हैं उसको, खटू, नमकीन, खटू होता है। तो ये सब रजोगुण का लक्षण है। वो कभी कभी इतना वो मिर्चीदार, मसालादार होता है कि शरीर के सभी द्वारों से पानी निकलता रहता है, लोग उसको खाने में आनंद लेते हैं, है ना। तो वो होना नहीं चाहिए, और ज़्यादा ये सभी पिकल, पिकल में ज़्यादा हम लोग घुसना नहीं चाहिए, पिकल है ना, वो सब में हमें घुसना नहीं चाहिए, वो सब रजोगुण में आता है ना। और तमोगुण मतलब क्या, ऐसे सड़ा हुआ, बासी, और जो मांस, मच्छी, और क्या है, अंडों से युक्त, वो तमोगुण का अन्न है भगवान। तो ऐसे अन्न खा के कोई योगी नहीं बनता है, विशेष करके तमोगुण और रजोगुण में जो अन्न होता है उसको खाकर कोई योगी नहीं बनता है, आहार खाकर। तो सत्वगुण में होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। और भक्त तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वास्तव में योगी मतलब भगवान को अर्पित किया हुआ वही चीज को खाता है, इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद भूंजते थे त्वगम पापम पचन्त्यात्म कारणात्, जो अपने लिए जो अन्न बनाते हैं वो सिर्फ पाप खाते हैं, ऐसे भगवान प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे। तो कृष्ण भावनामृत में क्या है, जो कुछ भी है हम भगवान को अर्पित करके हम लोग खाते हैं, और उसको भी मॉडरेटली करना चाहिए, जितना जरूरत है हम अपनी सेवा के लिए उतना ही करना चाहिए, ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने सन्यासी शिष्यों को निंदा, डांटा करते थे वो, ज़्यादा मोटे हो गए तो उनको डांटा था, और तुम ज़्यादा खा रहे हो और सो रहे हो, ऐसे बोलते थे। तो कभी अनुमति, और उसके लिए क्या करते थे, क्या उसका ट्रीटमेंट देते थे वो, जब तक वेट कम नहीं होता तब तक फास्टिंग करना है। वो भक्ति सिद्धांत सरसठ, वो नियम था भक्ति सिद्धांत सरसठ, जब तक वेट कम नहीं होता है तब तक जितना आपकी सेवा के लिए आपका शरीर के अनुसार, कभी आप लंबे हैं तो थोड़ा ज्यादा वेट हो सकता है आपका, मनोर का कम होना चाहिए, है ना, मनोर तो ठीक है ब्रह्मचारी, अच्छा होना चाहिए, अच्छा सेवा करते हैं, अच्छा प्रसाद लेते हैं, कीर्तन करते हैं, है ना, ठीक है, है ना, नयन वेट वगैरह ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम बता रहे हैं ना, जितना आपकी सेवा के लिए जरूरत है उतना करना चाहिए, आप पेशेंट बनने के लिए हम नहीं बता रहे हैं। पेशेंट मतलब वो तमोगुणी है, पेशेंट मतलब क्या है, वो तमोगुण है, वो सतोगुण में रहना है, हमें रहना चाहिए, ठीक है। बहुत राजभोग खा के इस कारण में बहुत, है ना, क्या शरीर बिगड़ जाता है ना, है कि नहीं, विशेष करके पुजारी लोग होते हैं, है तो ज्यादा में इस कारण में स्वास्थ्य की समस्या इसके कारण ही होती है, बहुत राजभोग में वो मग्न हो जाते हैं, राजभोग प्रसाद, सॉरी राजभोग में भोग तो नहीं कहते हैं भक्त लोग, राजभोग प्रसाद में मग्न हो जाते हैं। ब्रह्मचारियों को सरल होना चाहिए प्रसाद, है ना, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए, कम भी नहीं, जितना हमें भक्ति के लिए जरूरत है उतना हमें स्वीकार लें, और ज़्यादा भी सोना नहीं चाहिए और कम भी सोना नहीं चाहिए, कम सोएंगे तो भी होता नहीं है, कम सोएंगे तो पागल हो जाएंगे, ज़्यादा सोएंगे तो भी पागल हो जाएंगे, वो भी तमोगुण का लक्षण है कि नहीं। सो नियमित होना चाहिए, कितना है यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के अंत में बोलते हैं ना, 6 घंटा हमें सोना चाहिए। कभी कभी ऐसे हो सकता है किसी का स्वास्थ्य के कारण 7 घंटे तक हो सकता है, लेकिन उसके उससे भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और कोई कोई 5 घंटे में ही संतुष्ट हो जाते हैं, तो 6 घंटा क्या है, एवरेज है, तो उससे ज़्यादा सो लेते हैं तो क्या हो जाएंगे, तो हम लोग तमोगुण में, जो व्यक्ति 24 घंटों में से 6 घंटों से अधिक सोता है वह अवश्य ही तमोगुणी है, तमोगुणी व्यक्ति आलसी होता है और अधिक सोता है, ऐसे व्यक्ति योग नहीं साध सकता है, ऐसे हमने। तो अगला श्लोक, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो खाने सोने आमोद प्रमोद में तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर सकता है। यहाँ पर कैसे नियमित जीवन बिताना योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो भक्ति में भी हमें नियमित रहना चाहिए, भक्ति अभ्यास में भी हमें नियमित रहना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं बहुत सेवा करूँगा करके, ऐसे बहुत सेवा करते हैं लेकिन अंत में बीमार होके क्या करते, गिर जाते हैं, वो समय व्यर्थ हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग जितना नियमित होंगे ना, अंत में हम लोग ज़्यादा कंट्रीब्यूट योगदान दे सकते हैं, इसलिए वो नियमित होना बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो इसलिए युक्त आहार विहार युक्त चेष्ट से कर्म, लेकिन यहाँ पर तो प्रभुपाद जी क्या कहते हैं तात्पर्य में, वो ऊंचा एक स्तर के बारे में वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे गोस्वामी लोग अव्यर्थ कालत्वम, तो अव्यक्त कालत्वम तो ये भाव भक्त का लक्षण है। तो रूप गोस्वामी, लेकिन हमें भी जागरूक रहना चाहिए, कभी भी समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। समय भी क्या है, भगवान के शक्ति है, उसको उनको अच्छी तरह से उनकी सेवा में उपयोग करना चाहिए। उसको सभी हम सब कुछ हम भगवान की सेवा में अर्पण करते हैं ना, वैसे समय भी हमें भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहिए। तो हमें उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अव्यर्थ कालत्वम का अर्थ होता है भक्त जो शुद्ध भक्त होते हैं वो एक क्षण में भगवान को स्मरण किए बिना, उनकी भक्ति किए बिना नहीं रह सकते। तो रूप गोस्वामी एक आध दिन वो थोड़ा सो लेते थे, एक घंटा डेढ़ घंटा, तब भी वो लोग कहते थे सभी गोस्वामीगण कि मैं भगवान को स्मरण किए बिना इतना समय व्यर्थ गवा दिया। शिल प्रभुपाद हर रोज सुबह उठ के वो ग्रंथ लिखते थे, वो दिन में 45 मिनट थोड़ा विश्रांति लेते थे दोपहर के समय। हर रोज वो कहते थे कि अभी मैं अपना समय बर्बाद करने के लिए जा रहा हूँ, ऐसे कहते थे। तो ये शुद्ध भक्त का लक्षण होता है, वो कभी भी समय को बर्बाद नहीं करते हैं। तो कैसे फिर समय को उपयोग करना चाहिए, नियमित जीवन बिताना चाहिए हम लोग। तो अनियमित करें हो जाएंगे तो भी हम ज़्यादा योगदान करेंगे, करके अनियमित हो जाएंगे तो भी बाद में उसका गलत प्रभाव पड़ जाता है शरीर के ऊपर, क्योंकि शरीर को भी पोषण करना जरूरत होता है ना, इसलिए नियमित जीवन बिना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग देर रात प्रचार वगैरह नहीं करना चाहिए, तो बाद में आपको प्रचार करने वाला का जरूरत पड़ता है, कोई आपको प्रचार करना पड़ता है, आप बीमार पड़ जाएंगे, फिर बीमार मतलब सब कुछ थमोगुण में चला जाएगा, है ना। कुछ हम लोग वो समय व्यर्थ हो जाएगा बाद में, है ना, तब प्रचार नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं कर पाएंगे। तो एक आध दिन ठीक है, कम से कम 5 दिन तो, हफ्ते में 5 दिन तो जल्दी सोना चाहिए, ऐसे हमें व्यवस्था करना चाहिए। तो नहीं तो बाद में कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग। और यहाँ पर फिर से प्रसाद के बारे में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि भगवद गीता के अनुसार भगवान कृष्ण को शाक फूल फल अन्न दुग्ध आदि भेंट किए जाते हैं। इस प्रकार एक कृष्ण भावना वाले व्यक्ति को ऐसा भोजन न करने का स्वतः प्रशिक्षण प्राप्त होता है जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं होता या सतोगुणी नहीं होता। तो जहाँ तक कि सोने का, ज़्यादा से ज़्यादा मनुष्य समाज में सतुगुण को लाने के लिए कोशिश करना चाहिए। तो वर्णाश्रम समाज क्या है, सत्वगुण का समाज है, हालांकि उसमें भी शूद्र होते थे, तमोगुणी होते थे, कोई चांडाल होते थे, लेकिन वो बहुत ही कम हुआ करते थे, ठीक है। तो प्रभुपाद जी, क्योंकि पाश्चात्य देश में लोग अंधाधुंध मांस खाते थे, अभी भारत में भी ऐसे हुआ, भारत तो सबसे बड़ा क्या है, मीट एक्सपोर्टिंग कंपनी है, विशेष करके बीफ मतलब गाय को मांस को क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोर्ट आमद और निर्यात करने वाला देश है। ऐसा जगह पर जहाँ पर गायों को पूजा जाता था, रक्षा किया जाता था, तो वहाँ पर इतना हत्या किया जा रहा है आजकल। तो उसके बारे में हम 14 अध्याय में चर्चा करें, क्योंकि वहाँ पर वर्णन आता, ठीक है। तो प्रभुपाद कर्म कितना होना चाहिए, कितने घंटे का कार्य होना चाहिए बताते हैं, 6 घंटा होना चाहिए कर्म भी 6 घंटा होना चाहिए, या ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटा तक। आजकल लोग कितना घंटा काम कर्म करते हैं बताइए, 12-14, और उसके साथ साथ घूम चलना भी होता है ना, घर से ऑफिस तक एक एक घंटा चलते हैं, बड़े बड़े शहरों में बहुत भी होता है, और भी होता है 2-3 घंटा ऐसे। तो ऐसे लोकल ट्रेन में जाते हैं, बस चेंज करते हैं, बहुत हाँ तो 2 घंटा जाना आना, तो तो ऐसे होता है बड़े शहरों में। आजकल वो मेट्रो भी बनाया लोग, है ना, मेट्रो बना के घंटों घंटों प्रयास प्रवास करो, है ना। तो ये सब मिलके 14 घंटा, है ना, 16 घंटा काम करता है। ऐसे करके कुछ भक्ति नहीं, कुछ आध्यात्मिक जीवन नहीं, कुछ योगाभ्यास नहीं, योग वगैरह कुछ नहीं, है ना। डॉक्टर लोग भी बहुत मेहनत करते हैं ना, डॉक्टर लोग भी। तो ये सब योग के लिए सहायता नहीं करते हैं। तो आगे का श्लोक लेंगे। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्त्रह सर्वकाम्योभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। तो यहाँ पर वो बोलते हैं, जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। एक पॉइंट है वो युक्ताहार, नियमित जीवन के बारे में। द्रौपदी जी बहुत नियमित होते थे अपने खाने में, समय कौन से समय में खाना वगैरह सब कुछ। वो हर रोज 1:30 बजे प्रसाद लेते थे। 1:30 बजे मतलब डेढ़, वो विमान में प्रवास कर रहे तो भी वो 1:30 बजे लेंगे। ऐसे नियमित जीवन। वो अपने शिष्य क्या करना चाहिए, वो उनके जो सेवक होते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो उसको पैक करके, प्रसाद को पैक करके उनको सर्विंग करते हैं, उसी समय पर वो लेंगे। तो ऐसे नियमित उनका स्ट्रिक्ट था रिजल्ट। ये बहुत अच्छा है भक्तों के लिए, ब्राह्मणिकल लाइफ कल्चर है। ऐसे समय पर सोना, समय पर पढ़ाना, वो धीरे धीरे हम लोग तो इसमें प्रगति करेंगे आध्यात्मिक जीवन। हाँ शर्म, यहाँ पर 14वें श्लोक में क्या आया था, हाँ, शरीर मन तथा कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए, है ना, निरंतर उसको नियमित करने में निरंतर अभ्यास होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। या जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है, मगला श्लोक पढ़ रहा हूँ, कौन सा श्लोक है, 18, वही पढ़ रहे हैं ना हम। जब योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर कहा जाता है। यहाँ पर यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्प्रह सर्व पापे सर्व काम्योभ्यो युक्त इच्छुच्यते तदा। कौन है अष्टांग योगी, कैसे हम उनको पहचानते हैं, तो इसके बारे में बता रहे हैं। योगी कौन है, उसके क्या लक्षण है, इसके बारे में बता रहे हैं। तो वो क्या है, निस्प्रह सर्व काम्योभ्यो, वो महत्वपूर्ण है। तो भौतिक इंद्र तृप्ति की इच्छा से वो आकांक्षित नहीं रहना चाहिए। तो आकांक्षा नहीं रहना चाहिए इंद्र तृप्ति के, इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वो अम्बरीश महाराज के उदाहरण को बता रहे हैं। ये अम्बरीश महाराज सभी इंद्रियों को अर्पण करके वो क्या किया उन्होंने, कामम च दासे न तो काम काम्यया यतुत्तम श्लोक जनाशय रसी। तो तो वो कहते हैं ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्त के सर्वथा अनुरूप है। ये विशेष करके कामम च दासे न तो काम काम्यया यतुत्तम श्लोक जनाशय रसी। तो भगवान के भक्ति के लिए आकर्षित होकर वो सभी कामों को नियंत्रण किया, भौतिक इच्छाओं को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। निर्विशेषवादियों के लिए यह दिव्य अवस्था अनिवार्य अनिर्वचनीय हो सकता है। क्या समझ में आ गए? इट मे नॉट बी प्रैक्टिकल फॉर देम। तो ये सब इन इंद्रियों को, इंद्रिय विषय, इंद्र तृप्ति के विषयों को, इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को, इच्छाओं से मुक्त होना या आकांक्षा रहित होना, लेकिन भक्त के लिए स्वाभाविक है ऐसे बोलते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए अत्यंत सुगम एवं व्यवहारिक है। जैसा कि महाराज अम्बरीश की ऊपर वर्णित जीवन चर्या से स्पष्ट हो जाता होता है। जब तक निरंतर स्मरण द्वारा भगवान की चरण कमलों में मन को स्थिर नहीं कर लिया जाता, तब तक ऐसे दिव्य कार्य व्यवहारिक नहीं बन पाते। अतः भगवान की भक्ति में इन विहित कार्यों को अर्चन कहते हैं, जिसका अर्थ है समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। तो श्रील प्रभुपाद, जब भी कोई भक्त मुझे बहुत काम वासना की क्या है इंद्र तृप्ति की इच्छा बहुत तकलीफ दे रहे, तो वो क्या करते थे? अर्चना में लगने के लिए कहते थे। अर्चना में लगने के लिए कहते थे। विशेष करके गृहस्थ भक्तों को वो बताते थे, गृहस्थ भक्त क्या करना चाहिए, अर्च विग्रह का सेवा करना चाहिए, ऐसे कहते थे। इसके कारण हम ऐसे भौतिक इंद्र तृप्ति की आकांक्षाओं से रहित हो जाएंगे। इंद्रिया तथा मन को कुछ न कुछ कार्य चाहिए, कोरा निग्रह व्यवहारिक नहीं है। अतः सामान्य लोगों के लिए विशेष तरह जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं है, ऊपर वर्णित इंद्रियों तथा मन का दिव्य कार्य ही दिव्य सफलता की सही विधि है, जो भगवद्गीता में युक्त कहा गया है। तो सभी गृहस्थों को युक्त होना चाहिए, है ना? तो जब भी ऐसे इच्छाएं हो जाती है तो भगवान को आरती करना चाहिए, उनको सेवा करना चाहिए, है? तो मंदिर मार्जन करना चाहिए, ये सब हमें करना चाहिए। यथा दीप निवातस्तो निंगते सोपमस् स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो हमने बताया ना योग के ऊंचे स्तर, यहाँ पर विशेष करके ध्यान और समाधि का वर्णन आता है। तो मन को वश करके उसने क्या किया? धारणा ध्यान, धारण मतलब मन को वश में करना, और ध्यान मतलब उसको आत्मा के ऊपर सदैव स्थिर रखना, या परमात्मा के ऊपर उसको स्थिर रखना, उसको ध्यान कहते हैं। तो उसके कारण क्या हो जाता है? यहाँ पर भगवान एक दीपक को तुलना कर रहे कि ऐसा दीपक जहाँ पर वायु रहित स्थान में वो सीधा जलता है, वैसे ही उसके मन वश में है तो वो आसानी से स्थिर कर सकता है, ध्यान अपने ध्यान को स्थिर कर सकता है। तो उसके नतीजा क्या हो जाता है? वो समाधि को प्राप्त करता है। यत्र परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्त्यात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं मदिन्द्रियं व्यत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तद्गतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुर्यापि विचालयेत् तं विद्या दुःखसंयोगं वियोगं योगसंहितम्। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमी हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपत्त नहीं होता, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसे स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता।
या निस्संदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो यहाँ पर ये समाधि का वर्णन आ रहा है कि कैसे एक व्यक्ति समाधि में रह के वो दिव्य आनंद का अनुभव करता है। उसको अनुभव करने के बाद उससे और कुछ नहीं, बहुत अच्छा चीज़ है ना, इससे और परे नहीं है उसका अनुभव होता है। हम लोग अभी भी भौतिक जगत में बहुत सारा चीज़ है, अच्छा अच्छा चीज़ उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे हम लोग सोचते हैं। यत्रो परमते चित्तम यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नादिकम ततः, इसको प्राप्त करने के बाद और कुछ नहीं है बोलते हैं। तो विशेष करके जो भक्ति में भगवान को भक्ति, भगवान के भक्ति प्राप्त करने के बाद और कुछ नहीं है, वो नव्याय स्कंद में आता है। जब दुर्वासा मुनि जो योगी है, अष्टांग योगी है, तो वो कहते हैं भक्तों के लिए और कुछ प्राप्त करने का क्या चीज़ है, क्योंकि वो भगवान हमेशा उनके साथ है और भगवान से बढ़कर और कुछ होता है क्या, नहीं ना। तो विशेष करके भक्तों के लिए ऐसे ये लागू होता है। तो योगी भी ऐसे समाधि को प्राप्त करके दिव्य आनंद का अनुभूति होता है, उससे और कुछ नहीं है ऐसे वो उसका महसूस होता है। यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुना भी विचार लेते, सबसे बड़ा दुख प्राप्त करने के बाद भी वो विचलित नहीं, जैसे पांडव प्रहलाद वगैरह बहुत सारे दुख आए लेकिन वो कभी विचलित नहीं हुए। हाँ, जब गोवर्धन भगवान उठाया उन्होंने, वो पत्थर के या स्तंभ खंभे के समान वो पानी बरस रहा था गोवर्धन के ऊपर, लेकिन गोवर्धन विचलित नहीं हुए, वो बहुत ही प्रसन्न थे क्योंकि भगवान ने उनको उठाया था। भगवान के जो अंगूठे को उनको छूने के कारण वो बहुत ही प्रसन्न थे। तो यस्मिन स्थितो न दुखे न गुरुना भी विचार लेते। सो थम विद्या दुख का संयोगम वियोगम। और यहाँ पर वो जो है पश्चन आत्मनि तुष्यति सुखम अत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम मतीन्द्रियम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, सुखम अत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम मतीन्द्रियम। वो अतीन्द्रियों के द्वारा, आध्यात्मिक इंद्रियों के द्वारा वो दिव्य आनंद को महसूस करते हैं। हम लोग भौतिक सुख के बारे में कल चर्चा किया ना, हम लोग भौतिक सुख कैसे प्राप्त होता है, भौतिक इंद्रियों के द्वारा, जब इंद्रिय विषयों से संसर्ग के कारण जो रस प्राप्त होता है उसको भौतिक सुख कहते हैं। लेकिन उसके तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वो पद्म पुराण से श्लोक उल्लेख करते हैं, वो कहते हैं रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेनासो परब्रह्मा विधीयते। परब्रह्म को राम इसलिए कहते हैं कि इसके संबंध में जो दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं, सत्यानंद चिद आत्मनि, चिद आत्मनि मतलब चिद मतलब दिव्य इंद्रियों के द्वारा वो लोग उस आनंद को प्राप्त करते हैं। वैसे यहाँ पर सुखम अत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, तो ये भौतिक इंद्रियों के परे जो सुख है उसको प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य में इसके ऊपर जोर दे रहे हैं कि भौतिकवादी लोग जो मायावादी लोग हैं, तथाकथित जो ज्ञानी और मायावादी या योगी होते हैं, मायावादी योगी जो होते हैं, मायावादी होते हैं, वो लोग कोई भी सुख को स्वीकार नहीं करना चाहते क्योंकि सुख मतलब वो माया समझते हैं, सुख मतलब भौतिक सुख समझते हैं और उसको माया समझते हैं, मिथ्या समझते हैं, इसलिए वो सुख को टुकराते हैं। जब योग अभ्यास करते समय भी उनको जो आनंद मिलता है उसको टुकरा देते हैं वो लोग। लेकिन श्रील प्रभुपाद यहाँ पर पतंजलि के योग सूत्र से उल्लेख करते हुए वो कहते हैं कि कैसे जो योगाभ्यास करके जो सुख प्राप्त होता है वो भौतिक सुख नहीं है, वो आध्यात्मिक सुख है, ऐसे वो कहते हैं। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रति प्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा व चित शक्ति रीति। वो कहते हैं कि पुरुषार्थ शून्यानाम, पुरुषार्थ मतलब धर्म अर्थ काम और अंत में भगवान में लीन होना, कैवल्य कहते हैं उसको, भगवान में लीन होना। पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होके ऐसे व्यक्ति जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की इच्छा से मुक्त हुए हैं शून्यानाम और अपने स्वरूप में स्थित हो गए। स्वरूप का क्या होता है,
स्वरूप का क्या अर्थ होता है?
वो वास्तविक मुक्ति है। मुक्ति रित्वान्यता पापम स्वरूपेन व्यवस्थितः। हम सब लोगों का स्वरूप है भगवान कृष्ण के, हम दास है। हमारे जो नित्य संबंध है उसका हमें अनुभव होने, साक्षात्कार होने के बाद वो हमें चित शक्ति रीति, हमें आनंद किससे मिलता है? चित शक्ति के द्वारा आनंद प्राप्त होता है। तो योग अभ्यास में भी ऐसे होता है और भक्ति में तो होता ही होता है। भक्ति में जब हम लोग शुद्ध अवस्था में जाते हैं तो वहाँ दिव्य शक्ति हमारे हृदय को आवृत कर देता है। महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता। जो महात्मा है दैवी दैवी प्रकृति या आध्यात्मिक प्रकृति के आश्रय में रहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति क्या है? एक शक्ति के समान है, इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो श्रील प्रभुपाद भक्ति की परिभाषा देते हुए अपने भक्ति रसामृत सिंधु में वो कहते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ एनर्जी, एक शक्ति है। वो क्या शक्ति है? वो भगवान के स्वरूप शक्ति है, चित शक्ति है, अंतरंग शक्ति है। वो हमारे हृदय को आवृत कर देता है और दिव्य आनंद का अनुभूति कराता है। तो इसलिए हमें उसको टुकराना नहीं चाहिए। वो भौतिक नहीं है, वो है ना, वो मायावाद है, वो लोग जो टुकराते हैं। ऐसे श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं, वो वेदांत सूत्र से भी उल्लेख करते हैं, आनंदमयोभ्यासात, कि परब्रह्म क्या है? आनंदमय है। जीवात्मा भी अंश होने के कारण वो भी आनंदमय है। इसलिए जब यहाँ पर समाधि का वर्णन हुआ, सुखम अत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, वो जो आनंद है वो अतीन्द्रिय आनंद है, आध्यात्मिक आनंद है, चित शक्ति है। स्वरूप में स्थापित होने के बाद वो प्रकट हो जाता है। तो ऐसे भगवान कह रहे हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि दो प्रकार के समाधि है बोलते हैं, संप्राज्ञता समाधि, असंप्राज्ञता समाधि। तो संप्राज्ञता समाधि का अर्थ होता है कि जब व्यक्ति दिव्य स्तर पर स्थित हो जाता है, अलग अलग दार्शनिक संशोधन के द्वारा उसको संप्राज्ञता समाधि कहते हैं। यहाँ पर कौन से समाधि का वर्णन कर रहे हैं फिर भगवान भगवान इन श्लोकों में? असंप्राज्ञता समाधि उसको वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये मानसिक चिंतन के द्वारा या दार्शनिक चिंतन के द्वारा ये प्राप्त नहीं हुआ, ये योग अभ्यास करके प्राप्त हुआ है। तो उसको भी वर्णन करते हैं श्रील प्रभुपाद कि वह क्या है असंप्राज्ञता समाधि। दो प्रकार, एक बार इस दिव्य स्थिति को प्राप्त कर ले या समाधि प्राप्त हुई है, असंप्राज्ञता समाधि में संसारी आनंद का कोई संबंध नहीं है रहता है। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो वह कहा जाता है कि वहां से पढ़िए थोड़ा,
अध्याय में वर्णित योग पद्धति के अनुसार समाधियां दो प्रकार की होती हैं, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधियां। जब मनुष्य विभिन्न दार्शनिक शोधों के द्वारा दिव्य स्थिति को प्राप्त होता है तो वे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कि उसे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई है। असंप्रज्ञात समाधि में संसारी आनंद से कोई संबंध नहीं रहता, क्योंकि इसमें मनुष्य इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के सुखों से परे हो जाता है।
समझ में आ गए, ये असंप्राज्ञता, क्योंकि सुखम इंद्रिय कम दैत्य, यहाँ पर क्या है, क्या बता रहे भगवान? सुखम अत्यंतिकम यत्तद् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त कर रहे, कोई भौतिक सुख को नहीं प्राप्त, इसलिए असंप्राज्ञता समाधि है, ऐसे यहाँ पर वर्णन हो रहा है। तो अगला श्लोक लेंगे। सनिश्चयेन युक्तव्यं योगो निर्विन्न चेतसा प्रभवान् कामांस त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनस्सैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समं तदः। कौन पढ़ेंगे? पढ़िए, कोई अनुवाद पढ़िए।
योगाभ्यास करने वाले को अनुवाद। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पद से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं का निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे।
यहाँ पर ये जो शब्द है सनिश्चयेन युक्तव्यो योग निर्विन्न चेतसा, एक व्यक्ति को तो संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे रहना चाहिए। सो पथ से विचलित ना हो, निर्विन्न चेतसा, तो ऐसे कहते हैं। और संकल्प प्रभावान कामांस त्यक्त्वा सर्वान शेषतः, सो संकल्प के साथ क्या करना चाहिए? दृढ़ता के साथ उसको सभी इच्छाओं को, इंद्र तृप्ति की इच्छाओं को पूरी तरह, अशेषता मतलब पूरी तरह से उसको निकाल देना चाहिए। मनसे वेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समंततः, सो ऐसे इंद्रियों को निग्रह करते हुए योग अभ्यास करना चाहिए, मन और इंद्रियों को। ये जो शब्द है निश्चयन शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो निश्चयन मतलब बहुत ही दृढ़ता पूर्वक, डिटर्मिनेशन कहते हैं उसको। तो कैसा निश्चय है वो? कैसा निश्चय? कम से कम वो जो निश्चय है, ये दृढ़ता है, उसको दृढ़ता कहते हैं निश्चय को। ये दृढ़ता कैसे होना चाहिए? वो सत्वगुण में होना चाहिए। कोई किसी को पता है सत्वगुण का दृढ़ता कैसे होता है? कहाँ पर वर्णन हुआ है? भगवान दृढ़ता को भी तीन गुणों में वर्णन करते हैं, 18वें अध्याय में। तो वो वहां पर कहते हैं कि तो तीन प्रकार के दृढ़ता कहते हैं। दृत्यया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे ना व्यभिचारिण्य धृति स पार्थ सात्विकी। इसका अनुवाद है धृत्ययाधारयते मनः प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेना व्यभिचारिण्य धृति स पार्थ सात्विकी। हे प्रतापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों में वश में रखती है, वह धृति सात्विक है। समझ में आ गया? योगाभ्यास के द्वारा ऐसे धृति को प्राप्त किया जाता है, लेकिन यहां पर क्या बोल रहे? इस योग अभ्यास करने के लिए ऐसे धृति का जरूरत है, ऐसे बोलते हैं। समझ में आ गए? फिर कौन सा, कैसे प्राप्त करेंगे हम लोग? समझ में आ गए क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या प्रश्न है? समझ में आ गए? तो उसको तात्पर्य देखिए, हम लोग 33वां श्लोक पढ़ रहे हैं 18वें अध्याय का। ये प्रतापुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस तरह मन प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश रखती है, वह धृति सात्विक है। तात्पर्य योग परमात्मा को जानने का साधन है। जो व्यक्ति मन प्राण तथा इंद्रियों को परमात्मा के में एकाग्र करके दृढ़तापूर्वक उनमें स्थित रहता है वही कृष्ण भावना में तत्पर होता है। ऐसे धृति सात्विकी होती है। अव्यभिचारिणी शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूचित करता है कि कृष्ण भावनामृत में तत्पर मनुष्य कभी किसी दूसरे कार्य द्वारा विचलित नहीं होता। समझ में आ गया, बहुत ही रेलेवेंट है ना अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं उसके लिए, है ना। तो अभी क्या बोल रहे भगवान, बहुत ही दृढ़तापूर्वक इसको योगाभ्यास करना चाहिए। तो दूसरे शब्दों में हमें सत्वगुण में होना चाहिए जिसके कारण ऐसे दृढ़ता प्राप्त हो जाता है जिसके द्वारा हम लोग इस योगाभ्यास को अच्छी तरह से कर सकते हैं, ये हमें कह रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में वो क्या रहे? वो श्लोक भी उल्लेख कर रहे हैं ना, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना संग त्यागा सतो वृत्ति ही वृत्ते है षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध्यति। तो वो कहते हैं कि हमें जो उत्साह होना चाहिए और निश्चय होना चाहिए। निश्चय मतलब वहाँ पर उपदेशामृत में क्या वर्णन किया था प्रभुपाद जी ने, कॉन्फिडेंस विश्वास होना चाहिए। तो यहाँ पर उसको दृढ़ता बताया गया है, लेकिन दृढ़ता कैसे आता है, विश्वास से ही आता है। श्रद्धा और विश्वास से दृढ़ता आता है, तो इसलिए निश्चय शब्द को यहाँ पर प्रभुपाद जी दृढ़ता कह रहे, सनिश्चय न युक्तव्य। तो योग निर्विन्न चेतस, तो निर्विन्न चेतस, तो ऐसे विदाउट डिविएशन इस पद से भी कभी विचलित हुए बिना इसको अभ्यास करना चाहिए। तो इसके बारे में, इस दृढ़ता के बारे में प्रभुपाद आदि को उदाहरण दे रहे, कैसे का स्पैरो क्या बोलते हैं उसको, चिड़िया क्या करता है, एक संकल्प करता है, वो भी दृढ़ता करता है। किसके लिए दृढ़ता करता है, क्योंकि उसने समुंदर के तट पर ऐसे अपने अंडे डाले थे, समुंदर में उसको छीन कर लेकर गए, मतलब समुद्र के लहर आते हैं ना और वो चले जाते हैं। इसके कारण उन्होंने क्या किया, वो उनको चुनौती दिया, अभी आप मेरे अंडे वापस नहीं देंगे तो मैं क्या करूँगी, ये पूरा समुंदर है उसको सुखा देंगे। वो अपने छोटा सा ये चोंच से क्या करते हैं, पानी लेके बाहर डालते हैं पानी थोड़ा। सब लोग हंस रहे थे, लेकिन गरुड़ जी को ये सब पता चल गया कि ऐसे उनके बहन ने ऐसा कर रहा है, तो तुरंत ही आके अपना जो महान जो विंग्स क्या बोलते हैं उसको, पंख है, उसको हिलाते हैं और कहते हैं जो देवता है समुंदर के देवता को, अभी वापिस नहीं दिया तो मैं करूँगा इसको पूरा। तो उनको जानते हैं गरुड़ का कितना शक्ति होता है करके, तो तुरंत ही वो वापिस कर दिया। और प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को हेल्प करता है उनको भगवान भी सहायता करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज हू हेल्प देमसेल्व्स, वो अंग्रेजी का एक वाक्य है अंग्रेजी भाषा में। तो उसको उल्लेख करते हुए जो भक्ति योग में कृष्ण भावनामृत में है, ऐसा लगता है कि बहुत ही विकट स्थिति में है, लेकिन वो भगवान की शरण लेता है तो बहुत ही दृढ़तापूर्वक भगवान उनको सहायता करेंगे। तो यूनिंग व्हाट वी आर डूइंग, व्हाट टाइम वी कैन टेक टुडे, 6 to 8 वी कैन टेक नो। तो नाउ वी विल स्टॉप, instead of 1 hour we will take 2 hours because we will get one extra hour, but if you do again 2 hours it will be too much for everyone। तो हम थोड़ा एक दो प्रश्न लेंगे, यहाँ रोकेंगे 25वें श्लोक तक। तो 25वां श्लोक से क्या बता रहे हैं भगवान, 24वां श्लोक से मन को नियंत्रण करने के बारे में बता रहे, मनस्सेवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समंतता। अंत में क्या रहे ना, मनस और इंद्रियों को
नियंत्रण रखना चाहिए। तो मन को नियंत्रण, भक्ति में भी उसको नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि बहुत बार बहुत कुछ सोचता है मन, उसको रोकना चाहिए उसको। अभी बस जो निजी कार्य है, हमें जो कार्य बताया गया है, हमारा जो साधना बताया गया है, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, है ना। मन उसका स्वभाव होता है भागना 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 भागना, उसका स्वभाव होता है, उसको एक समय पर रोकना चाहिए। अभी बस रुको, अभी हाँ, अभी हरे कृष्ण महामंत्र करो, पढ़ाई करो अच्छी तरह से, या सेवा करो, सेवा में लगो, लगना चाहिए उसको, लेकिन है। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? आमोद प्रमोद मतलब हाँ, भक्तों में ज्यादा हंसी मजाक वगैरह ज्यादा ना। हमारा आमोद प्रमोद तो कीर्तन है, बस संकीर्तन करते हैं ना हम लोग, कीर्तन करते हैं, नाचते हैं उसमें, और क्या करना है ना। सब लोग नाचना चाहिए कीर्तन में, है ना।
वो भी जाना
कीर्तन क्यों कम होना चाहिए, कीर्तन हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य अंगों को भी करना चाहिए, भक्ति को, अंगों को। थोड़ा सोशलाइजिंग हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए, वही करते बढ़ना नहीं चाहिए, ज्यादा कम बोलना अच्छा है हमेशा। बक 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 करते रहते हैं ना वो अच्छा नहीं, ठीक है। मन को भी रोकना चाहिए, मन को भी नियंत्रित करना चाहिए, हमें ऐसे उसको छोड़ना नहीं चाहिए अनियमित, है ना। हाँ, या आप ऐसे थोड़ा सत्वगुण में रहेंगे तो आपका दृढ़ता अच्छा रहता है, जैसे हम लोगों ने चर्चा किया, वो आप सही चीज को पालन कर रहे हैं और गलत चीज को पालन कर रहे हो, उसका कुछ समस्या नहीं होता है, है ना। तो दृढ़ता है तो आप आजीवन जा सकते हैं, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, वो सत्वगुण में अपने आप को शांत वातावरण में रखते हैं, ज्यादा मन को विचलित नहीं करते हैं, तो ऐसे आजीवन जा सकते हैं, है ना। और दूसरा चीज क्या होता है, ऐसे कुछ योगाभ्यास किया था ना, तो शरीर थोड़ा हिल जाता है, थोड़ा आनंद होता है ना, रिजिड, अभी रिजिड बन गया शरीर में, है ना, उसके लिए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे नियम पालन नहीं करते, चार नियम वगैरह ऐसे नहीं पालन करते, वो लोग अच्छा जीवा को सब कुछ वो संतुष्ट करते हैं। और मैथुन भी बहुत सारे लोग पकड़े जाते हैं ना साधु, पकड़े जाते हैं ना। और दक्षिण भारत में एक तथाकथित रैस्कल, वो तो बता दिया, कोर्ट में भी उसको खींचा गया, फिर भी वहाँ पर भी बता दिया, वो तैयार है, मैं तैयार हूँ, क्या समस्या है, ऐसा बोलता है लोग। इसलिए सही संन्यास क्या है, उसके लिए भी हमें वर्णाश्रम को स्थापित करना जरूरी है, नहीं तो ऐसे तथाकथित जो स्वामी साधु लोग क्या करेंगे, उसको गलत बताएंगे, कोई नियम नहीं। आजकल कोर्ट को, कोर्ट में जो भी आप खींच के लेके जाओगे, वो कोर्ट का रैस्कल को भी पता नहीं है शास्त्र का नियम क्या है, सन्यासी क्या होते हैं, वो सब कुछ नियम नहीं, कोई धर्म नहीं, धर्म कोई वेल डिफाइंड कोई धार्मिक नियम नहीं है। इसलिए वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने बताया ना, पहले एक स्त्री होती है, वो होती थी, वो सबको आलिंगन करती थी, अभी एक पुरुष भी आया है जो सबको आलिंगन करता है, स्त्रियों को भी आलिंगन, ये लोग साधु बन रहे हैं, सही साधु का क्या है, उसके लिए भी हमें वर्णाश्रम को स्थापित करना पड़ेगा ना, है कि नहीं? धर्म को स्थापित करना पड़ेगा, ऐसे नियमों को स्थापित करना पड़ेगा, कोर्ट में ऐसे नियम होना चाहिए। शिक्षा वो लॉ स्टडी, अभी आजकल लॉ स्टडी करते हैं वो लोग, ये धर्मशास्त्रों को अध्ययन, धार्मिक नियमों को, जो भगवद्गीता में बताया गया। नहीं तो समाज ऐसे कोई भी सफरन पहनेगा, कुछ भी करेगा चलेगा, है ना? साथ में दो तीन सेवा दासियों को रखेगा, है ना? और कुछ उसके पहले के श्लोक के ऊपर भी चर्चा करते समय हमने बताया ना गुण गुण, यहाँ पर सिर्फ प्रभुपाद जी क्वांटिटी भी नहीं बताया, वो गुणात्मक दृष्टिकोण से भी क्या अन्न होना चाहिए ऐसे बताया। दैट इज व्हाट इज दैट वेगन वेगनिज्म वेगनिज्म लेकिन भगवान सत्वगुण का अन्न को बताया, लेकिन अन्य शास्त्रों में उसके बारे में बताया है, भागवत में बताया गया है दूध कितना महत्वपूर्ण है। वो तो हमारे भारतीय संस्कृति है, दूध घी, घी के संस्कृति, घी के बिना कोई अन्न पका भी नहीं जाता था पहले जमाने में। ये ऑयल खाना वगैरह सभी थर्ड क्लास फोर्थ क्लास लोग है, कभी भी राइस को घी के बिना, असुर लोग आते हैं राइस को घी के बिना, जो सतु ऐसा होता ही नहीं था पहले जमाने में। तुम क्या बकवास बोल रहे हो ऐसे उनको पूछना चाहिए, ये हमारा संस्कृति है। और सभी भागवत में मिल्क का मैंने अन्य शास्त्र में वर्णन हुआ है, मनुष्य मनु संहिता में वर्णन, मनुष्यों के लिए क्या अन्न है। हाँ या भागवत में तो बहुत मिलेगा आपको, भागवत में है ना। अरे भगवान ही गोपाल है और वो दूध पीते थे, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम भगवान से भी श्रेष्ठ है क्या? और भगवद्गीता मानते हो, है ना? भगवद्गीता संक्षेप में दिया गया सत्वगुण का, आचार्य वो समझाते हैं हम लोगों को, आचार्यों के द्वारा भगवद्गीता समझ, अपने मन गणित ढंग से समझना नहीं चाहिए, तुम्हारा बड़ा स्कॉलरशिप से समझना चाहिए। पहले उसको काट देना, तुम्हें शिष्य बनने का या गीता वेद वेद पठन करने का कोई योग्यता नहीं है, उसके ऊपर चर्चा मत करो ऐसे, तुम्हारा कोई योग्यता नहीं है उसके ऊपर चर्चा करने का, ठीक है? वाद विवाद करने के लिए आता है तो ऐसे काट दे बस।
ये श्लोक क्रमांक 24 में ये श्लोक बताया है, उत्साह निश्चय धैर्य, इसमें हमने ये भी बोला उसके साथ की श्रद्धा शब्द विश्वास करें, इसके बारे में कुछ नहीं बोला पूछा था कि इसमें जो श्लोक बताया है ना उत्साह निश्चय धैर्य, किसी को जहाँ हम चर्चा कर रहे थे सुनने श्रद्धा को डिटर्मिनेशन को हमने बना श्रद्धा भी
डिटर्मिनेशन, उसको ऐसे हिंदी में अनुवाद क्या किया है, दृढ़ता होना चाहिए ना, दृढ़ता दृढ़ संकल्प होना चाहिए ना डिटर्मिनेशन, और यहाँ पर क्या अनुवाद है, कुछ अनुवाद हुआ है
या
श्रद्धा से आता है।
तो मालूम हो जाए कि इन दोनों श्लोक में कोई रिलेशन है।
श्रद्धा शब्द है सदृढ़ विश्वास और सनिश्चय में एकव्य में
श्रद्धा शब्द विश्वास
और उत्साह। हाँ हाँ, वो सभी जो गुण है उत्साह निश्चय धैर्य के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा ही फ्यूल है भक्ति के लिए, ठीक है। वो सभी में विश्व श्रद्धा चाहिए। तब तत् कर्म प्रवर्तना संगति आवश्यक हो। और कुछ उसके ऊपर हम बहुत बोलते हैं जब उस श्लोक को लेते हैं ना, जब वो श्लोक सिखाते हैं तब तो श्रद्धा के ऊपर बहुत बोलते हैं, क्योंकि श्रद्धा बहुत जरूरत है। श्रद्धा के आधार पर ही वो उत्साह निश्चय दे रहता है। और कुछ माधवेंद्र गुरु का कुछ है
शास्त्र में स्त्रियों के बारे में ऐसा क्यों बताया गया कि उनका कंठ ये है या उनकी बहुत उनकी सुंदरता है, ऐसा सब उसके बारे में पुरुष के बारे में कभी कुछ नहीं है।
आपके बारे में लिखेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे कि स्त्री क्या है, फेयर सेक्स, सेक्स बोलते हैं ना, मेल और फीमेल को सेक्स बोलते हैं ऐसे, है ना, लिंग लिंग बोलते हैं ना उसको। स्त्री क्या है, वो सुंदर लिंग है। पुरुष क्या है, कुरूप लिंग है। ऐसे हम देखते हैं कभी कभी सुंदर स्त्री होती है और उसका पत्नी, उसका पति है वो सब काला वा सब कुछ रहता है, तो ठीक है। इसलिए पुरुषों के लिए माया क्या है, स्त्री का सुंदरता, और स्त्रियों के लिए माया क्या है, स्त्री पुरुष का धन संपत्ति वगैरह वो माया है स्त्रियों के लिए। उसके लिए वो किसी से भी विवाह कर लेता है, सुंदर हो या ना सुंदर हो, ये माया है। माया ऐसे काम करते है ना, ठीक है। पुरुष को बांध के रखने के लिए माया को, स्त्री को ऐसे सुंदर बनाया है माया शक्ति ने, माया रूपिणी ऐसे लिखा गया है भागवत में, माया रूपिणी है स्त्री।
वो पुरुष बोलते हैं कि स्त्रियों के अंदर वो तेजधार होती है, उसके अंदर वो स्वार्थ, लेकिन पुरुष के अंदर भी बहुत वो स्वार्थ होता है कि उससे उसका उपभोग करेगा, ये करेगा वो करेगा।
लेकिन जितना स्त्री को होता है उतना नहीं,
उतना नहीं होता।
उतना भी नहीं कर सकते आप।
तो
वो देखो एक बार वो एक संतुष्ट नहीं करो कैसे होता है, देखो वहाँ पर ज्वालामुखी हो जाता है। जो भी चाहिए उसको नहीं दे दो। एक भक्त बता रहे थे हमें, वो बहुत भक्त क्या है, बहुत मतलब बहुत अमीर थे, हर महीना 40,000 रुपये मंदिर को देते, अभी भी देते हैं 40,000 रुपये हर महीना देते अभी भी, बता रहे थे बहुत अमीर है वो, बता रहे थे प्रभु जी इतना डिमांड है पत्नी, मतलब इतना डिमांड करती, इतना डिमांड करती, इतना डिमांड करती, आप डायमंड को भी देंगे और उसके बाद 2 दिन के बाद एक डिमांड को पूरा नहीं करेंगे, वो डायमंड का प्रभाव नहीं रहता है, 2 दिन में ही खत्म रहता है। और वो बोल रहे थे ये भक्तों का स्थिति है, जो समझ लिया है भक्ति के समझ लिया है, इनका स्थिति ऐसे है, भक्तों का सोचे ऐसे, ऐसे गृहस्थ भक्त आके हमें बताते हैं बहुत सारा चीज बताते हैं, वो इतना त्रस्त रहते हैं।
हमारा जो मम्मी लोग हैं, माता जी लोग तो सिंपल
रहे,
उनको भी डिमांड
नहीं, वो जमाना चला गया।
लेकिन ये जो
स्वास्थ्य
की बात
तो
पहले से है
ना, ऐसा वो भागवत में ऐसे क्यों कहा गया, फिर भी उस समय भी रहता है स्त्री स्त्री है, सिंपल रहता है लेकिन फिर भी उनका डिमांड रहता है। इसको थोड़ा बंद करके चर्चा।